दिन भर 24 जून रविवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान, राष्ट्रपति अर्दोगान के लिए फैसले का दिन। आखिरकार सऊदी अरब में महिलाओं ने गाड़ी चलाना शुरू किया। लेकिन अभी भी कई अधिकारों से वंचित हैं महिलाएं, बताएंगे आपको विस्तार से और सुनिए।
मान लीजिए कलकत्ता जा रहे हैं तो इन लोगों को एक दिन का 80 रुपए मिलता है, 80 रुपए में कौन कलकत्ता से आएगा।
इन लोगों को साइकिल का भत्ता दिया जाता है, एक चोर को पकड़ने के लिए क्या मेरे हस्बैंड साइकिल में जाएंगे, बताइए आप लोग।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में आज मतदान हो रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति रिजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उनका साथ देगी और वो एक बार फिर सत्ता में आएंगे। इस्तांबुल में मतदान के लिए पहुंचे अर्दोगान ने कहा कि लोगों ने सामने आकर मतदान किया है और तुर्की गणतंत्र को बनाने में अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। माना जा रहा है कि चुनावों में मध्यम मार्गी वामपंथी नेता मुहारेम इंजे से उन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है। मुहारेम इंजे ने भी अपने शहर येलोवा में आज मतदान किया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने बीते गुरुवार पैदा हुई अपनी बेटी का नाम नेवेते अरोहा दिया है। अर्डर्न दुनिया की ऐसी दूसरी महिला नेता हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बच्चे को जन्म दिया है। अपने कार्यकाल के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली विश्व की पहली महिला नेता बेनजीर भुट्टो हैं। संवाददाताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री जैकिंडा ने कहा कि वो एक ऐसे वक्त की उम्मीद करती हैं जब ऐसा करना नई बात नहीं रहेगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो मैंने कहा वो सच साबित हो। मुझे एक बेहतर दुनिया चाहिए। ऐसा करने को एक नए काम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केवल औरतें ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न के शब्द। सऊदी अरब में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगा विवादित प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसके बाद आज वहां महिलाओं ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। ऐसा करने वाला सऊदी अरब दुनिया का आखिरी देश है। देश में कई महिलाओं ने ठीक आधी रात को अपनी गाड़ी निकाली और अपनी जिंदगी में पहली बार गाड़ी चलाकर सड़क पर उतरी। भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंच रहे अफ्रीकी और मध्य पूर्वी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय यूनियन के 17 देशों के नेताओं की बैठक आज ब्रसेल्स में होने वाली है। प्रवासियों की समस्या को सुलझाने के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन के कई सदस्य देश अलग अलग राय रखते हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल देश में गठबंधन सरकार के पूरी तरह न बनने तक इससे फिलहाल दूर रहना चाहती हैं। वहीं इटली की नई सरकार ने प्रवासियों से भरी नावों के अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। हंगरी ने देश में शरणार्थी बनना चाहने वालों की मदद करने को कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के यूरोप के निदेशक यूजिनो एम्ब्रोसी कहते हैं, मैं मानता हूं कि मुद्दे की जड़ तक जाकर वास्तव में ये समझा जाए कि आज असल स्थिति क्या है। जो कुछ हो रहा है उस संबंध में यूरोप में फिलहाल डर की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन प्रवासियों की संख्या में कमी आई है। ऐसा लग रहा है कि एक अलग तरह की स्थिति बन रही है। इस साल भूमध्य सागर से होते हुए करीब 16,000 प्रवासी इटली पहुंचे हैं। 50 करोड़ लोगों से भरे एक प्रायद्वीप में मात्र 16,000 लोग पहुंचे हैं। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के यूरोप के निदेशक यूजिनो एम्ब्रोसी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के उत्तरी शहर रक्का में कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के हमले की आशंका के कारण 48 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके शहर के भीतर पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि रक्का को इस्लामिक स्टेट अपनी राजधानी मानता था। बीते साल अमरीकी नेतृत्व में हुए कुर्द और अरब लड़ाकों की फौज ने इस्लामिक स्टेट को इस इलाके से खदेड़ दिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव। तुर्की में आज मतदान हुआ है। ये मतदान नई संसद और नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हुआ है। इसे राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान के 15 साल के शासन में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। राष्ट्रपति अर्दोगान यदि चुनाव हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सत्तारूढ़ एके पार्टी संसद में भी अपना बहुमत खो सकती है। 2 साल पहले तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद राष्ट्रपति अर्दोगान ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद तुर्की में आज पहली बार चुनाव हुए। इस्तांबुल में सुबह सुबह मतदान के लिए निकले एक मतदाता ने कहा,
काश ये चुनाव तुर्की और तुर्की के लोगों के लिए अच्छा साबित हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे अच्छा उम्मीदवार ही जीते। सुबह 8 बजे मतदान के लिए कितने सारे लोग आए हैं ये देखकर मुझे हैरानी हुई है। लोग जमकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं।
तुर्की में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से देश में शांति और स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त होगा।
मैं शांति, न्याय, भाईचारा, समानता और लोकतंत्र चाहती हूँ। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में वही जीते जो सचमुच काबिल हो।
तुर्की में राष्ट्रपति का ये चुनाव निर्धारित समय से पहले हो रहा है। राष्ट्रपति अर्दोगान ऐसा करके सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। इस्तांबुल में अर्दोगान ने मतदान किया जहां उनके समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। मतदान के बाद अर्दोगान ने यह भी कहा कि तुर्की में लोग इस बार बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि तुर्की में लोकतंत्र अब परिपक्व हो गया है। राष्ट्रपति अर्दोगान को इस चुनाव में मुहर्रेम इंजे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सेंटर लेफ्ट से ताल्लुक रखने वाले मुहर्रेम इंजे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद संवाददाताओं से कहा,
मैं आशा करता हूं कि ये चुनाव इस देश और इस देश के लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि होगा वही जो सबके लिए अच्छा होगा। आप सभी का शुक्रिया।
तुर्की में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि आज का दिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के लिए निर्णायक दिन है। अर्दोगान को इससे पहले इतनी चुनौती किसी चुनाव में नहीं मिली। राष्ट्रपति चुनाव के साथ हो रहे संसदीय चुनाव में भी विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है, लेकिन मतदाताओं ने इस बात का भी ख्याल रखा होगा कि कौन कुर्द है, कौन कुर्द नहीं है, कौन मजहबी है, कौन धर्मनिरपेक्ष। लेकिन आलोचक इसमें एक और सवाल जोड़ देते हैं, वो ये कि क्या ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए होंगे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। बात अब सऊदी अरब की। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा आखिरी देश था जहां आज से पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज सऊदी अरब की सड़कों पर महिलाएं भी गाड़ी चलाती नजर आ रही हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि गाड़ी चलाने के लिए महिलाओं पर लगी पाबंदी को हटा दिया जाएगा। उसी फैसले पर अमल करते हुए इस महीने की शुरुआत में 10 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए थे। आधी रात के वक्त कैलेंडर में तारीख बदली और 24 जून से इन महिलाओं को लगा कि उन्हें अपने हिस्से की थोड़ी और आज़ादी आज आखिरकार मिल ही गई।
ये किसी जादू जैसा लग रहा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि इस समय मुझे कैसा लग रहा है। गाड़ी चलाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। गाड़ी की पीछे वाली सीट में बैठने के अनुभव से ये एकदम अलग है। मेरी आंखें यहाँ वहाँ देख रही हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था।
तो जैसा कि आपने अभी सुना, सऊदी अरब की ये महिला बता रही थी पहली बार गाड़ी चलाते हुए उन्हें कैसा लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका अधिकार महिलाओं को है ही नहीं। जानकर हैरानी होगी आपको। बता रही हैं बीबीसी संवाददाता कमलेश।
सच
सऊदी अरब की महिलाएं अपने पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती। ये सऊदी अरब की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से है। अपने गठन के बाद से ही सऊदी अरब का झुकाव सुन्नी इस्लाम के कट्टर कहे जाने वाले वहाबी पंथ की ओर रहा है। वहाबी पंथ के मुताबिक प्रत्येक महिला का एक पुरुष अभिभावक होना जरूरी है जो उनके अहम फैसले लेगा। सऊदी अरब में पुरुष अभिभावक होने की अनिवार्यता का दूसरा उदाहरण पासपोर्ट हासिल करना और विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है। सऊदी महिलाओं का पासपोर्ट बनवाने या देश से बाहर जाने के लिए पुरुष अभिभावक की सहमति होना आवश्यक है। यहाँ तक कि काम पर जाने, पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी पुरुष अभिभावक की सहमति जरूरी है। महिला के पिता, भाई या कोई अन्य पुरुष रिश्तेदार अभिभावक की भूमिका में हो सकते हैं। अगर महिला विधवा हो तो कभी कभी उसका बेटा भी अभिभावक हो सकता है। शादी करने या तलाक लेने के लिए भी पुरुष अभिभावक से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर बेटा 7 साल से बड़ा और बेटी 9 साल से बड़ी हो तो तलाक की स्थिति में बच्चे का अधिकार यानी कस्टडी लेना भी मुश्किल है। यहाँ महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदार की दया पर निर्भर रहती हैं, जबकि अभिभावक महिला को चाहे तो अनुमति दे चाहे तो ना दे, ये अभिभावक की मर्जी पर निर्भर करता है। सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ढीले ढाले और पूरा तन ढकने वाले अबाया को पहनना उनके लिए बेहद जरूरी है। जो महिलाएं इस नियम का पालन नहीं करती उन पर धार्मिक पुलिस यानी मुतावा कार्रवाई करती है।
दिन भर में अब रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जहां बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री रहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन टूटने के बाद, राज्यपाल शासन लगने के बाद, बीजेपी के आरोपों के बाद आज थोड़ा खुलकर अपनी बात रखी है, बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, काफ़ी कुछ कहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने श्रीनगर में हमारे सहयोगी पत्रकार माजिद जहांगीर से अब से कुछ देर पहले बात की।
बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन सरकार टूटने के बाद पहली बार है जब महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री रही हैं उन्होंने खुलकर भाजपा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया है। आज अपने कई ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन आरोपों का खंडन किया है जो कल अमित शाह ने जम्मू में अपनी एक रैली के दौरान, कल वो जम्मू में थे, लगाए थे। जैसा कि उन्होंने एक ट्वीट में बताया है कि जो आरोप जम्मू और लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन के लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने इस इल्जाम की सफाई में कहा है कि अगर ऐसा होता तो बीते 3 वर्षों में बीजेपी के किसी भी मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया क्यों नहीं। तो इसी तरह एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये अफसोसजनक है कि भाजपा ने जिस शांति बहाली के लिए जम्मू कश्मीर में पहल की आज वो उससे मुकर रही है और उस पहल को अब मेरा सॉफ्ट अप्रोच बताया जा रहा है। लेकिन ये बात समझने की है, महबूबा मुफ्ती ने अगर सॉफ्ट अप्रोच से काम लिया था, क्योंकि जो सॉफ्ट अप्रोच का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो शुरू से जब से 3 साल से जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, तो लोगों में, आम कश्मीरियों में उनके खिलाफ काफी रोष था। उन पर यह आरोप था कि दिल्ली वाले उनसे जो है कश्मीर में सब कुछ करवा रहे हैं, एक जो मिलिट्री अप्रोच है उसको हरी झंडी मिली है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। जिस तरह से आपने पिछले 3 साल के हालात देखे, कश्मीर में काफी सिविल किलिंग्स हुई, काफी मिलिटेंट मारे गए, सुरक्षा बल भी उसमें कई मारे गए, तो एक अनसर्टिनिटी की जो स्थिति पिछले 3 सालों से कश्मीर में है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती जो कुछ भी आज कह रही है या फिर सफाई दे रही है आरोपों की, अगर उन बातों को पहले वो कहती जब वो भाजपा के साथ सरकार चला रही थी, वो जो है मुख्यमंत्री थी, तो शायद उनको राजनीतिक तौर पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता, एक पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलता अगर पहले वो गठबंधन सरकार टूटने से पहले ये बात कहती।
ये थे श्रीनगर से हमारे सहयोगी पत्रकार माजिद जहांगीर, और एक बार फिर माजिद जहांगीर के पास श्रीनगर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चरमपंथियों के साथ सैनिकों की मुठभेड़ हुई है, इस खबर पर और जानकारी के लिए श्रीनगर से टेलीफोन के जरिए माजिद जहांगीर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या अपडेट, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए ये आज दोपहर को कुलगाम के एक गांव है तिडर गांव, वहां पे ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी, और पुलिस की जो जानकारी अभी तक हमें मिली है, जो जानकारी पुलिस ने दी है, تو اس میں دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو کمانڈر ہے لشکر طیبہ کا, اور اس دوران وہاں پہ انکاؤنٹر سائٹ کے پاس کلیشز ہوئے سیکورٹی فورسز اور جو وہاں کے یوا ہیں, ستھانیہ لوگ ہیں, تو ان میں سے ایک یوا, کئی لوگ گائل ہو گئے ہیں اور ایک یوا کو گولی بھی لگی تھی جو وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے, کلیش کر رہے تھے سیکورٹی فورسز کے ساتھ. اور بتایا جا رہا ہے کہ خبروں کے انوسار, حالانکہ ابھی تک ادھیکارک طور پر اس کی پشٹی نہیں ہوئی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جب ان کو اسپتال پہنچایا گیا تو ان کی موت ہو گئی ہے, اور اس کے بعد اس علاقے میں پورے کلگام میں کافی تناؤ ہے اور انٹرنیٹ سیوا جو ہے اس پورے ڈسٹرکٹ میں جو آس پاس کے دوسرے علاقے ہیں وہاں انٹرنیٹ سیوا بھی بند کی گئی ہے.
ماجد, ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں جب بھی اس طرح کی مٹ بھیڑ کی کوئی خبر آتی ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ کی سیوائیں کیوں بند کر دی جاتی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟
دیکھیے, ہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب بھی تناؤ کی استھتی یا انکاؤنٹر تو ایک دم سرکار بہت ہی جلد انٹرنیٹ سیوائیں بند کرتی ہے, اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ایک تو خبریں پہنچتی ہے عام لوگوں تک, سوشل میڈیا پر جو استعمال ہوتا ہے یا پھر اس سائٹ کے جو درشیہ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں, عام لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں, اور جس سے وہ لوگ بہت ہی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور دوسری جگہوں پر بھی پھر استھتی خراب ہونے کی جو ہے کہ اپریہنشنز رہتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر بھی کشمیر گھاٹی میں استھتی خراب ہو جائے. اور یہ آج تک جو ہے سیکورٹی ایجنسیوں کی یہی دلیل ہے کہ انٹرنیٹ کو اسی لیے بند کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک ان چیزوں کو روک لگائی جائے اور لوگ ایموشنلی اٹیچ نہ ہو جائے.
بہت شکریہ. شری نگر سے ماجد جہانگیر جانکاری دے رہے تھے. کلگاؤں میں چرم پنتھیوں کے ساتھ سینکوں کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے. ادھر جھارکھنڈ میں مانو تسکری کے خلاف ابھیان چلانے والی ایک غیر سرکاری سنستھا سے جڑی پانچ لڑکیوں کے ساتھ بیتے دنوں کتھت ساموہک بلاتکار کے بعد کہنے کو پولیس اور پرشاسن حرکت میں آیا ہے, لیکن ویسی کاروائی نظر نہیں آ رہی جو چار پانچ دن کی گھٹنا کے بعد نظر آنی چاہیے. راجیہ میں اس گھٹنا کے ارد گرد اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تازہ جانکاری کے لیے رانچی میں ہمارے سہیوگی پترکار روی پرکاش سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی.
دیکھیے, یہ گھٹنا ہے 19 تاریخ کی اور آج 24 جون, پانچ دن ہو گئے, اس کے باوجود پولیس یا سرکار کی کوئی بھی ٹیم اس جگہ تک نہیں پہنچ پائی ہے جہاں کتھت طور پر یہ گینگ ریپ ہوا تھا. اور آج جو جھارکھنڈ کے ڈی جی پی ڈی کے پانڈے بھی کھونٹی گئے تھے, مہیلا آیوگ کی ٹیم بھی وہاں تحقیقات کرنے پہنچی ہے, لیکن ان سب لوگوں کی جانچ بھی کھوٹی ہی میں چل رہی ہے. نہ تو کوئی کوچانگ گیا ہے جہاں سے انہیں اغوا کیا گیا تھا, اور نہ اس جنگل میں کوئی جا سکا ہے جہاں کتھت طور پہ گینگ ریپ ہوا. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کی اس تھیوری کو لے کر بھی لوگوں میں ناراضگی ہے, جس کے تحت کوچانگ کے مسلم اسکول کے پرنسپل فادر الفانسو کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کی گرفتاری کو ناجائز بتانے والے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے, کیونکہ کھونٹی جو ہے نا وہ عیسائی دھرمالمبیوں کی بہت آیت والا ضلع ہے. جو یہ مانتے ہیں کہ یہاں کی بھاجپا سرکار چرچ کو پریشان کر رہی ہے, اس وجہ سے فادر کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس بھی اس کی ویاکھیا نہیں کر پا رہی ہے. اور اس بیچ آج ابھی کچھ دیر پہلے جو بڑی گھٹنا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رانچی کے کارڈینل تھے سی سی ٹوپو, انہوں نے اپنے پد سے استعفا دے دیا ہے. حالانکہ ابھی یہ بات آدھکارک طور پہ نہیں کہی گئی ہے کہ اس کا کوئی سمجھ کھوٹتی ہے کہ نہیں, لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ اس استعفے کا کوئی نہ کوئی سمبند کھوٹی کے گینگ ریپ کانڈ سے بھی ہے. چرچ نے ایک وگتی جاری کی ہے, صرف اس میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ کارڈنل ٹوپو نے استعفا دیا تھا, جسے پوپ نے کل روم میں دیکھے اور سویکار کر لیا. کچھ دیر پہلے رانچی میں پریس کانفرنس ہوئی جس میں کارڈنل نے سوئم لیا جانکاری. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کانڈ کے بعد سے, اور جو وپکش ہے جھارکھنڈ میں, جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور دوسری پارٹیاں, ان کے ایک ودھائک سے میری بات ہوئی پولیس فورین سے, جنہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر عیسائی سمیوں کو پریشان کر رہی ہے سرکار.
جھارکھنڈ کے کھونٹی ساموہک کتھت ساموہک بلاتکار معاملے پر یہ تھے رانچی سے روی پرکاش.
بی بی سی ہندی ریڈیو پر بدھوار کو دنیا جہاں
انتراشٹری خبروں کے پیچھے کا سچ,
شکروار کو اتہاس کی پرتیں کھولتی ویویچنا,
اور شنیوار کو آپ کی آواز انڈیا بول.
اگلی خبر چھتیس گڑھ سے, جہاں سپاہیوں کے کام کے گھنٹے کتنے ہوں, انہیں چھٹیاں کس طرح سے ملیں, ویتن بھتے कम है तो बढ़ाने की मांग की जा रही है। इन सब बातों को लेकर पिछले सप्ताह भर से राज्य के अलग अलग जिलों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। राजधानी रायपुर में 25 जून को एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार पुलिस के हक में होने वाले सारे आयोजनों को कठोरता से रोकने की भी कोशिश कर रही है। और जानकारी रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट में।
यह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए सिपाही विद्रोह जैसा तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से सिपाही और उनके परिजन राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे सरकार सिपाही विद्रोह की तरह ही मानकर चल रही है। पुलिस द्रोह अधिनियम 1922 के तहत सिपाही किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, इसलिए आमतौर पर इस आंदोलन में उनके परिजन ही भाग ले रहे हैं। सरकार किसी भी तरीके से 25 जून को राजधानी में होने वाले आंदोलन को रोकना चाहती है, लेकिन सिपाहियों के परिजन इस बार आर पार की लड़ाई की मुद्रा में हैं। सिपाहियों के परिजनों के पास उनकी परेशानियों की लंबी फेहरिस्त है,
क्योंकि पुलिस परिवार मतलब पुलिस वालों को उनको ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं है, तो अपनी परिवारों की सुधी कहाँ से लेंगे वो? उनको बिल्कुल समय नहीं होता कि उनके बच्चे को, मतलब कितने टाइम स्कूल जा रहे, कब आ रहे हैं, घर में क्या बन रहा है, किस कौन बीमार है, किसको क्या परेशानी, उनको किसी चीज का पता नहीं होता।
सातों दिन काम और घोषित समय से कई कई घंटे अधिक ड्यूटी के बाद इन सिपाहियों को मिलने वाला कम वेतन तो सवालों के घेरे में है ही। अंग्रेजों के जमाने से मिलने वाले भत्तों को लेकर भी पुलिसकर्मी और उनके परिजन नाराज हैं।
मान लीजिए कलकत्ता जा रहे हैं तो इन लोगों को एक दिन का 80 रुपए मिलता है, 80 रुपए में कौन कलकत्ता से आएगा?
इन लोगों को साइकिल का भत्ता दिया जाता है, एक चोर को पकड़ने के लिए क्या मेरे हस्बैंड साइकिल में जाएंगे, बताइए आप लोग।
आज की तारीख में जबकि अपराधी हवाई जहाज से फरार हो रहे हैं, तभी छत्तीसगढ़ में सिपाहियों को महीने का 18 रुपए साइकिल भत्ता दिया जाता है। कहीं यात्रा करनी हो तो सिपाही को 25 से 80 रुपए तक का हर दिन का यात्रा भत्ता मिलता है। इसके अलावा हर दिन पौष्टिक भोजन के नाम पर भी 3.5 रुपए इन सिपाहियों को दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता विकास उपाध्याय का कहना है कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सिपाहियों की हालत कहीं अधिक खराब है।
पुलिस परिवार के जायज मांगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। अन्य प्रदेशों की तुलना अगर आप करेंगे, चाहे राजस्थान, हरियाणा, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, तमाम जगहों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस परिवार को छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा इस तरह के आरोपों से सहमत नहीं है।
देखिए, पुलिस के लिए पूर्ण रूप से पहल है, जहाँ भी हमारा चाहे नक्सली क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में भी उनके लिए आवास की व्यवस्था, नक्सल भत्ता, पूरे प्रदेश में उनके रहने के लिए 10,000 आवास बनाए जा रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की ध्यान रखा गया है।
गृह मंत्री सिपाहियों की एक भी मांग मानने के पक्ष में नहीं है, उल्टा विभाग ने कई सिपाहियों को निलंबित कर दिया है, तो कई को तो नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। गृह मंत्री रामसेवक पैंकरा इस कार्रवाई को लगातार जारी रखने के पक्ष में हैं। फिलहाल तो सबकी नजरें 25 जून को राजधानी रायपुर में होने वाले सिपाहियों के आंदोलन पर टिकी हुई हैं। इस आंदोलन की सफलता से ही शायद सिपाहियों के काम के घंटे, अवकाश और दूसरी सुविधाओं पर कोई फैसला हो पाए। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब खेल समाचार। सफेद झकाझक कुर्ता पजामा पहनकर आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं, खेल के मैदान आपके हवाले।
जी देखिए संदीप, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है तो इसलिए कुर्ता पजामा तो ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए फुटबॉल विश्व कप की तो उसकी भी गर्मी काफ़ी छाई हुई है, जहां आज थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने पनामा को 6-1 से बात दी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं संदीप चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की, जिसका आयोजन नीदरलैंड्स में किया जा रहा है और 37वीं बार ये ट्रॉफी खेली जा रही है
और बड़ा प्रतिष्ठित मुकाबला है।
जी हाँ, लेकिन इस बार ये इसका अंतिम संस्करण है और पाकिस्तान ने दुनिया को इस टूर्नामेंट को दिया था, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वो भी कई बार बहुत ही दमदार प्रदर्शन करते हुए इसकी चैंपियन बनी 3 बार। भारत को कभी भी चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पिछली बार जो संस्करण हुआ था उसमें भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और उम्मीदों के बिल्कुल साथ इस बार भारतीय हॉकी टीम ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन करते हुए आज ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना चाइना को 2-1 से हरा दिया। भारत के हरमनप्रीत सिंह ने खेल के 17वें मिनट में तब गोल किया जब भारत ने को पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसके बाद खेल के 28वें मिनट में मनदीप सिंह ने बैतानी गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। खेल के 30वें मिनट में अर्जेंटीना के प्लेट गोंजालो ने इस बढ़त को कम करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया। दरअसल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इससे पहले कल भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। अब भारत का अगला मुकाबला 27 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से होगा, यानी 2 दिन का समय और है। यहाँ पर हम आपने को बता दें कि ये भारत के पूर्व कप्तान सरदार सिंह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि वो उनके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जीवन का 300वां मुकाबला था, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा,
Yeah, I think it's a great moment for me and proud moment. I would like to thanks to all my teammates, family, friends, Hockey India. I think it's a great opportunity and I think 300 is too. It's a really proud moment.
तो जैसा कि सरदार सिंह ने कहा कि 300वां मुकाबला खेलना उनकी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण, और उन्होंने उसका श्रेय अपने साथी खिलाड़ियों को दिया।
आदेश जी, हॉकी की बहुत बात हो गई विस्तार से, अब फुटबॉल के मैदान में लौट चलें। फीफा में क्या कुछ हो रहा है?
जी देखिए संदीप, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अगर फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता तो चैंपियंस ट्रॉफी की गूंज इस समय सुनाई दे रही होती, लेकिन फुटबॉल उसका तो नाम कानों में सुनते जैसे नसें फड़कती। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वो केवल एक बार चैंपियन बनी है, लेकिन आज उसने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पनामा को 6-1 से मात दी, और इंग्लैंड का विश्व कप में किया गया ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। इंग्लैंड के लिए स्टोनेस ने खेल के 8वें और 40वें मिनट में यानी 2 गोल किए, जबकि केन ने तो हैट्रिक जमाई जिसमें से 2 गोल उनके पेनल्टी पर थे, जबकि 1 गोल लिंगार्ड ने किया। पनामा के लिए बालोय ने इकलौता गोल किया। लगातार 2 जीत के साथ अब इंग्लैंड अगले दौर में भी पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज अन्य मुकाबलों में जापान का सामना सेनेगल से और पोलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इससे पहले जापान ने कोलंबिया को 2-1 से और सेनेगल ने पोलैंड को 2-1 से मात दी थी। उधर अगर क्रिकेट का जिक्र किया जाए तो इंग्लैंड ने जहां फुटबॉल में आज बहुत ही शानदार खेल दिखाया, वहीं क्रिकेट के मैदान में इंग्लैंड की टीम पिछड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि मैनचेस्टर में आज मेज़बान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 206 रनों का लक्ष्य है। थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 66 रन बनाए थे। आउट होने वाले खिलाड़ियों में जेसन रॉय, बेरेस्टो, एलेक्स हेल्स, जो रूट और कप्तान मोर्गन शामिल हैं। जोस बटलर 27 और मोइन अली 3 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी जो पारी है वो 34.4 ओवर में ही महज 205 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 56 और एलेक्स ने 44 और डार्सी शॉर्ट ने नाबाद 47 रन बनाए। इंग्लैंड के मोइन अली ने 46 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था, लगभग 484 रन बनाए थे इसी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने, तो अगर आज का मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस वो ज़रूर लेगी। और जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते ही हैं कि भारतीय टीम भी इंग्लैंड पहुंच चुकी है, और देखना है कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने कहा है कि मेरे लिए काउंटी क्रिकेट ना खेलना ब्लेसिंग डिसगाइज रहा है, यानी उनका जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरा समय मिला। तो अब देखना यह है कि भारतीय टीम इंग्लैंड में किस तरह का प्रदर्शन करती है।
और आपने क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल, हॉकी, आज कोई खेल नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया विस्तार से खेल समाचार हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए। और अब वक्त हो चला है चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनने का।
बीबीसी समाचार। तुर्की में आज राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए मतदान हो रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावों में मध्यमार्गी वामपंथी नेता मुहारेम इंचे को मौजूदा राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान से कड़ी चुनौती मिल सकती है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने बीते गुरुवार पैदा हुई अपनी बेटी का नाम नेवेते अरोहा रखा है। सऊदी अरब में महिलाओं की गाड़ी चलाने पर लगा विवादित प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसके बाद आज वहां महिलाओं ने खुशी मनाई। भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंच रहे अफ्रीकी और मध्य पूर्वी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय यूनियन के 17 देशों के नेताओं की आज ब्रसेल्स में बैठक हो रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया दिलनवाज पाशा ने। अगला प्रसारण भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।